दूसरे दिन प्रातःकाल, तमसा तट। उंदुबर की एक शाखा पर दो क्रौंच पंछी बैठे हैं और परस्पर चोंच से चोंच, गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं। पृष्ठ संख्या 123। ये पंछी साधारण क्रौंचों जैसे नहीं लगते। क्रौंच इतने सुंदर विचित्र चित्र कहाँ होते हैं। ये नील मराल हैं या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण हैं या किरातों के पीत सागर के अनामा मरकत पाखी हैं, जो पीत सागर से इरावती के स्रोत तक शरद और बसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पंछी नहीं है, कोई देवता युग्म है जो पक्षी रूप धारकर मर्त क्रीड़ा के लिए उतरा है। माणिकवरड़ी, लाल चोंच, गर्दन और डैने शुद्ध मरकत नील, शेष अंग मुक्तावरड़ी उज्ज्वल, ऐसे सुंदर पंछी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण जो कुछ दूर पर बैठा है सावित्री का जप करने और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता है उतना ही मुग्ध होता जाता है। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रह रह कर अटक जाता है, ठीक से वह जप नहीं पा रहा है। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे, दोनों कई दिनों से बिछुड़े थे, कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पाश, एक नियति, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई और ये कई परस्पर बिछुड़ते रहे। आज अचानक संयोगवश मरुत गड़ों की कृपा से ये पुनः नदी की मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आँखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई और एक प्रेमालोकित मन के साथ ये लौट आए तट पर और उंदबरु शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है एक ऋचा, जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवात एक दूसरे की ओर तृषित भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट शत वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के ओठ ओम तत्सवितुर्यवरेण्यम बुदबुदा रहे हैं और मन पढ़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की उंगलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई हैं, जब वहीं रुक गया है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है, अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है। चारों ओर सुगंध फैल जाती है और उस फूल को चारों ओर से चारों भुजाओं में वेष्टित करता हुआ एक मलय पावन का झकोरा उपस्थित हो जाता है और फूल के कानों में कहता है, तुर तुर तुत तुत, जुट आए न यहाँ पर भी, बेमतलब पवन बेग के पीछे पीछे भागते आए। तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी? तुम जो मेरी हृदय की एक सांस हो, क्यों मेरी बन्नी मेरी वाणी, तुम तो क्रौंच मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस समय उषा स्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठों में रहना होगा, अथवा गंगा सरयू की वारी धारा में सूर्य को अर्घ्य देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में, अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम संचरण करोगी और तुम्हारे पास नुपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। पृष्ठ संख्या 124। यहाँ आकर मामूली पक्षी प्रणय जैसे भदेश ग्राम्य दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि दोनों का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु तुम मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे कह रही हो बेमतलब झूठ आया मैं। क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद दूं जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त्य मानवों का काव्य रचोगे। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवीय ही रहेंगे, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कीर्ति का गान। तुम देखोगे कि तुम्हारी अपौरुषेय कविता से मानवीय कविता सुंदर ही होगी। देवी क्रिया शक्ति तो तुम ही हो, तुम काठ पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो देवता का ही मर्त्य संस्करण है। सुवासित पवन के भीतर से उतर आया, देखो तब जल्दी करो, वह जो सामने व्याघ आ रहा है, काला कुरूप, माथे पर मोर पंख खोसे, कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने, जाओ जल्दी करो, उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ और मैं प्रविष्ट हो रही हूँ उस गायत्री जपते हुए ब्राह्मण के कंठ में। मैंने जानबूझकर उसे उच्चाटन स्थापित कर दिया है, उसका मंत्र विफल है। इस विकलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कराकर नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ, जल्दी करो, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा और उसकी नज़र ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम करके दूर अपसारित हो जाएगा। जाओ, तुम लोभ बनकर उसकी इच्छा में उचित हो, तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश करो। तुम वेग बनकर उसे धूर्त बाण में धावामान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित क्रौंचों के जोड़े में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चारित करूंगी, भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम भी ठाठ बाट से अपने हंसयान पर सवार होकर जाना, चाहे प्रत्यक्ष अथवा उसके ध्यान लोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या ज्वर प्रलाप हो जो तुम्हें कल रात से विकल किए हैं, उसे बताकर अपना माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक बात और सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहन रूप में काम नहीं चलेगा। चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मल लेना, अन्यथा तुम्हें कोई विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मर्त लोग जो ठहरा, वहाँ प्रत्येक चीरकालीन, प्राचीन या आदि का अर्थ जीर्ण और बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुष्य तुम बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं सृष्टा होने का सुख लेने दो।